Sûret Bakara. सूरत फातिहा के बाद पहली सूरत है। बास रिवायात से ये भी पता चलता है कि कुरान पाक सूरत बकरा से शुरू होता है और सूरत अल फातिहा एक अलग सहीफा था जो उसकी अहमियत की वजह से कुरान पाक के आगाज में रखा गया। तो इस नाते से आप ये कह सकते हैं कि सूरत बकरा कुरान पाक की पहली तवील तरीन सूरत है, मदनी सूरत है। और इस सूरत के अंदर 286 286 आयात हैं, 40 रुकू हैं। सूरत का कुछ थोड़ा सा तारुफ लाजमी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बकरा के बारे में फरमाया कि ये अल बकरतु सनामुल कुरआनी व ज़ुर्वतुहु। मुसनद अहमद की रिवायत है कि सूरत बकरा कुरान पाक की चोटी है और इसको जहरा भी कहा गया। जहरा कहते हैं फूल के खिलने को, चमकने को भी कहते हैं। इसीलिए सूरत बकरा और सूरत आले इमरान दोनों को जहरतैन कहते हैं। और जिरवा जो होता है वो हर चीज का आला और अफजल हिस्सा होता है। रिवायत में आता है कि इसकी हर आयत के नजूल के वक्त 80 यानी 80 फरिश्ते नाजिल हुए। ये मुसनद अहमद की रिवायत है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इस सूरत की एक आयत ऐसी है जो तमाम आयतें कुरान में अशरफ और अफजल है और वो आयतुल कुर्सी है। ये तिरमिजी की रिवायत है। इब्ने मसूद फरमाते हैं कि सूरत बकरा की 10 आयतें ऐसी हैं कि अगर कोई शख्स इनको रात में पढ़ ले तो इस रात को जिन शैतान घर में दाखिल ना होगा और इसको और इसके घर वालों को इस रात में कोई बीमारी, रंज, आफत वगैरह कोई नागवार चीज़ पेश नहीं आएगी। और अगर ये आयतें किसी मजनू पर पढ़ी जाएं तो इसको फ़ायदा होगा। वो 10 आयतें कौन सी हैं? 4 आयतें शुरू की सूरत बकरा की, फिर 3 आयतें दरमियानी यानी आयतुल कुर्सी और इसके बाद की 2 आयतें, और फिर सूरत बकरा की आखिरी 3 आयतें। सूरत बकरा के बारे में ये भी आता है कि इसको पढ़ना क़यामत के दिन इंसान के लिए फ़ायदे का सबब होगा और इसको छोड़ने वालों को हसरत होगी। इसी तरह इसी सूरत के बारे में ये भी आता है कि सूरत बकरा पढ़ा करो क्योंकि बातिल परस्त लोग इसकी ताब नहीं लाते। और मुफस्सरीन ने कहा कि बातिल परस्त से मुराद यहाँ जादूगर है, यानी जादूगर जो हैं वो सूरत बकरा का मुकाबला नहीं कर सकते। मुराद यह है कि ऐसे शख्स पे फिर जादू का असर नहीं होता। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया ला तजलू बुयूतकुम कुबूरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। फ़इन्नल बैतल्लज़ी तुक़्रौ फ़ीही सूरतुल बक़र, वो घर जिसमें सूरत बकरा पढ़ी जाती है, ला यदखुलु खुश शैतान, उसमें शैतान दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह इस सूरत के बारे में ये भी अकवाल मिलते हैं कि इस सूरत में 1,000 हुक्म है, 1,000 खबरें हैं और 1,000 मनहियात यानी डूज, 1,000 और 1,000 1,000 डूज एंड 1,000 डोंट्स हैं। अब आप हम सब देख सकते हैं कि हम इसको पढ़ते हुए क्या वाकई ये नियत रखेंगे साथ ही साथ कि हम इसके हर हुक्म पे अमल करेंगे और हर बात से अपने आप को रोकेंगे जिससे इस किताब में रोका गया। थोड़ी सी बात मजीद इस सूरत के मिजाज को समझने के लिए जो इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प करेगी, वो क्या है कि कुरान पाक की सूरतें जो हैं ये जोड़ों की सूरत में नाजिल हुई हुई हैं। सूरत फातिहा के साथ उसका जोड़ नहीं है। बस कहते हैं कि सूरत फातिहा का जोड़ अगर करना है तो सूरत नास से होगा, यानी पहली और आखिरी सूरत मानी के एतबार से। इसके अलावा जितनी भी सूरतें हैं, मसलन सूरह बकरा और सूरत आले इमरान ये एक जोड़ा है, इसके बाद सूरत निसा और सूरत माईदा दूसरा जोड़ा है। इसीलिए सूरत बकरा और सूरत आले इमरान में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, मिलती हुई चीज़ें हैं। मसलन दोनों सूरतों का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम से होता है, जबकि सूरत निसा और मायदा में बगैर किसी तमहीद के बाद शुरू हो जाती है। सूरत निसा या युहन्नास से शुरू होती है और मायदा या युहल्लज़ीना आमनू से होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने सूरह बकरा और सूरह आले इमरान को अल जहरावैन कहा, दो चमकती हुई सूरतें। यही लफ्ज़ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम का हिस्सा भी था कि फ़ातिमा तो जहरा यानी चमकती हुई रोशन चेहरे वाली खातून। जैसे कुरान पाक की आखिरी दो सूरतों को मुअव्वज़तैन कहते हैं, दो वो सूरतें जिनके ज़रिए पनाह ली जाए। तो अब आप देखिए कि सूरत बकरा का जो बुनियादी टॉपिक है ना, वो इस्लामी मुआशरे का क़याम है। इंशाअल्लाह ताला दूसरे रुकू के आगाज़ में थोड़ी सी आपको वो हिस्ट्री बताऊंगी कि जिसकी वजह से आप मफहूम समझ सकेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना जहन में रखने की ज़रूरत है कि सूरत बकरा का पढ़ना और इसका मौका मिल जाना अल्लाह ताला की एक ख़ास रहमत है। ये वो सूरतें हैं कि जिनको सहाबे कराम कई सालों में पढ़ते थे और इसके एक एक लफ्ज़ पे गौर भी करते थे और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश भी करते थे। बुनियादी तौर पे सूरत में यहूद से उम्मत का जो मनसब था वो लेकर उम्मते मुस्लिमा को दिया गया। तो हम इंशाअल्लाह ताला सूरत को शुरू करते हैं और ये सारी चीज़ें जो मैंने सिर्फ इशारतन आपके सामने रखी, ये जहाँ जहाँ मुनासिब होगा आयतों के साथ साथ इसके बारे में आपको मज़ीद बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सात नाम अल्लाह के जो बेहद मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, हरुफे मुकत्तात हैं। ये क्या होते हैं? मक्की सूरतों की एक पहचान है कि अक्सर इनमें सूरत के आगाज़ में कुछ लफ्ज़ इस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ने वाले होते हैं कि जिनका बज़ाहर कोई माना समझ नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि इनके मानी अल्लाह ताला जानते हैं, यानी अल्लाह ने अपने नबी को जब नहीं बताए तो हमें भी इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये मान लीजिए कि ये कुरान पाक का हिस्सा है और जिस तरह एक लफ्ज़ पढ़ने पर 10 नेकियां हैं, इसी तरह इंशाल्लाह इन के पढ़ने का अजर होगा। जो इस नियत से पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको अजर ज़रूर अता करेंगे। कुरान पाक में टोटल 29 हरूफ मुकत्तात हैं। कौन कौन से हैं आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। अलिफ लाम मीम स्वाद रौ काफ हा या आइन तौ सीन हा काफ और नून। अब ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में आए हैं, कहीं हा मीम कहीं या सीन कहीं अलिफ लाम मीम और इसी तरह से कुछ और हैं भी 29, और 29 सूरतों के शुरू में आए हैं। बस कहते हैं ये अलर्ट करने के लिए हैं। बस आप बैठे हुए थे, एकदम ऊँगने लगे और एकदम आवाज़ आती है अलिफ लाम मीम। ऐसे लगता है ना जैसे किसी को अलर्ट किया जा रहा है। कभी आपने फौज में देखा होगा कि बिगल बजाया जाता है या किसी भी तरह से किसी को कॉन्शियस करने के लिए, उसको चुकन्ना करने के लिए, कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि सुनने वाले जो हैं वो बड़े गौर से सुने और उनको पता चल जाए कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। और इसमें अरबों को बेबस करना भी है कि जिस जुबान पे तुम इतना नाज करते हो, जिस किताब को तुम मानना पसंद नहीं करते, देखो उसके इब्तदाई लफ्ज़ों को भी तुम नहीं जानते। बस लोगों ने इसके साथ एक अपने लिए अमल ले लिया और वो क्या कि हरूफ़े मुक़त्तात को एक जायचे की सूरत में लिख के घरों में लटका लेते हैं। ठीक है, शौक से लटकाइए। आपने एक फूल की तस्वीर लगाई हुई है, आपने एक सीनरी लगाई हुई है, कोई हर्ज नहीं। आप डेकोरेशन भी समझते हैं, जो मर्जी समझें। लेकिन अगर किसी ने इसके साथ ये नज़रिया रखा कि इसके लगाने से बरकत होगी और इसके लगाने से रिस्क होगा, तो फिर इसकी दलील मांगी जाएगी, क्योंकि इस्लाम में कोई काम एक इंसान दलील के बगैर नहीं कर सकता। दलील जो है हमारे दीन का हुसन है, बुनियाद के ऊपर बात बनती है। तो कोई काम ऐसा किया जाए कि जिसकी अल्लाह के नबी सल्लम से हमें कोई सनद नहीं मिलती, तो बेहतर है कि उसको ना किया जाए। फ़र्ज़ तो नहीं है ना अल्लाह ताला से ये कहकर ऐसे कामों को छोड़ दिया जाए कि अल्लाह मुझे शक है तो मैं शक में क्यों पढूं। अगर इसमें फायदा है तो मैंने इस शक से छोड़ा है, तू मुझे फायदा ऐसे ही दे दे। नबी सल्लम ने फरमाया, दा मा युरीबिक इला मा ला युरीबिक, उस चीज को छोड़ दो जिसमें शक आए और उस चीज को ले लो जिसमें कोई शक नहीं है। और आखिरी बात इस पे यही कहूंगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कही इनके बारे में, कि वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, अल्लाह ताला जानता है कि इससे क्या मुराद है। बास कहते हैं ये असरारे वही हैं, अल्लाह ताला ने बताया ही नहीं, सारा कुरान बता दिया और कहा कि ये राज है मेरा, मैं क्यामत के दिन बताऊंगा। बास ने फिर बहुत सारी इसकी बातें की जिसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इस किताब में कुछ शक नहीं, राह बतलाती है डरने वालों को। इस आयत में अल्लाह ताला ने तीन बातें हमारे सामने रखी। अगर आप देखें तो इस आयत को आप तीन तरह से देख सकते हैं। पहला जुमला ख़त्म होता है ज़ालिकल किताब, यहाँ एक छोटा सा कॉमा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं कि ये एक किताब है, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दूसरा ला रईबा फी, इसमें कोई शक नहीं है, डाउटलेस है। और तीसरी बात हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा वालों के लिए हिदायत है। ये क्या बात है, हम तो सोचते हैं कि होना चाहिए था हुदल लिद्दालीन, भटकने वालों के लिए हिदायत है, हालांकि यहाँ आ गया हुदल लिल मुत्तकीन। तो इससे क्या पता चला, पहली बात के जालिका ये, अब ये जो है ना ये क्या मुराद है असल में, या ये और वो की एक बहस है, उससे ऊपर गुजरते हुए ये समझ लें कि जालिका से मुराद है ये वही किताब है जिसका वादा मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से किया गया था। पूरी सूरत बकरा को समझने के लिए एक पिन पॉइंट नोट कर लें कि सूरत बकरा में मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर खिताब यहूद से है। मदीना में आने के बाद ये इब्तदाई दौर में नाजिल हुई, वहां लोग मौजूद थे, इस्लाम को मानने की बजाय तासुब की वजह से झुठलाने लगे। कल तक दुआएं मांग रहे थे कि इस्लाम आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हम मानेंगे। जब आगे तो दिल के बुग़ज़ सामने आए और मानने से इनकार कर दिया। पता भी था कि इसमें हमारा फायदा है, दिल भी बेचैन था, अंदर मलामत भी थी, लेकिन लोगों की बातों के डर से उन्होंने इसको झुठलाना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने ऐसे ही लोगों को बता दिया कि ज़ालिकल किताब, आ गई वो किताब, ये है वही किताब जिसकी दुआएं मांगा करते थे, जिसके आने की तमन्नाएं किया करते थे। इसी तरह ज़ालिका से एक और मतलब भी लिया गया कि ये वो किताब है जो लौहे महफूज में थी और अब दुनिया में आनी शुरू हो गई। किताब का तारुफ है बड़े प्यारे अंदाज से, और ये भी बता दिया कि इस किताब के अंदर किसी किस्म का शक नहीं। ज़ा जो है ये इसम इशारा होता है, ली दूर के लिए है, का खिताब के लिए है, किसी चीज़ की बुलंदी या अजमत का इससे अंदाज़ा होता है कि इसको ये कह दिया जाए वो की बजाय। अल्लाह ताला ने इस किताब का तारुफ कितने अछूते अंदाज से कराया, ये है वही किताब, ऐसे लगता है जैसे किसी की चोरी पकड़ी गई, ये है वो किताब जिसकी इंसानियत को ज़रूरत थी, इस किताब के बगैर तुम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। पीछे बात गुजरी है हरूफ मुकत्तात की, एक बात उसमें और नोट कर लीजिए कि हमने कुरान पाक शुरू करते ही पहले लफ्ज़ पे ये कह दिया कि हमें इसके मानी नहीं मालूम। सोचिए ज़रा, बैठे थे हम कुरान पढ़ने सीखने आए और अलिफ लाम मीम पे कह दिया सॉरी वी डोंट हैव इट्स मीनिंग, ये क्या बात है। एक बहुत हुक्म इससे साबित, और वो क्या कि कुरान पाक को डिक्शनरी की मदद से नहीं समझा जा सकता, इसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से समझना लाजिम है। जो अल्लाह ने उनको नहीं बताया उन्होंने हमें नहीं बताया, तो जब हम अलिफ लाम मीम के मानी खुद से नहीं कर सके, हालांकि डिक्शनरी में कुछ ना कुछ मानी निकलेंगे और लंबी बहसें इसके ऊपर, किसी ने इसको अलिफ अल्लाह लाम जिब्रील, मीम मोहम्मद कहा, किसी ने इसको सूरतों के नाम कहे, किसी ने इसको कुछ और कहा, लेकिन हमने ये कहा कि हम इस कुरान को अल्लाह के नबी सल्लम के अकवाल और आपके अफाल की रोशनी में समझेंगे। तो क्या फिर इस बात की दलील मिलती है कि हम अपनी मर्जी से दीन का कोई हुक्म ये कह लें, क्या फर्क पड़ता है? गुलाम भी तो आलिम है, फलाम भी तो मुफ्ती है। सारी जड़ काट दी कि जब तुम हरूफ मुकत्तात अपनी मर्जी से नहीं कह सकते, अपनी मर्जी से जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, तो बाकी दीन के मामले में भी तुम्हारा यही मामला होना चाहिए। फिर फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रईब फी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा दावा है, इतनी बड़ी बात कह दी इसमें कि देखो ये किताब शक से पाक है। दुनिया में आप कोई भी किताब खोलते हैं ना, तो उसका शुरू में जो प्री फेस होता है, पेश लफ्ज़ जो होता है, और अमूमन राइटर की तरफ से लिखा होता है कि मैंने अपनी कोशिश के मुताबिक बेहतरीन किताब लिखी है, फिर भी गलतियों की गुंजाइश है, कहीं आपको कोई मिस्टेक मिले तो बता के शुक्रिया का मौका दें, ऐसी बातें लिखी होती है ना। फिर कभी क्या होता है, गलतियों से पाक, रिवाइज्ड एडिशन, पिछले एडिशन से एडवांस है। ये इंसानी कोशिशें हैं। दुनिया की कोई किताब ये दावा नहीं कर सकती कि जो मैंने लिख दिया है, कोई राइटर ये नहीं कह सकता, बड़े से बड़ा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बैठानिका और फलां ये नहीं कह सकते कि हमारी सारी इंफॉर्मेशंस दुरुस्त हैं। लेकिन ये किताब चूँकि इल्हामी किताब है, ये अल्लाह ताला की किताब है, इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आज ही बता दूं कि दिल को हर तरह के शक से पाक करके सुनना कि इसमें कोई झोल नहीं है, ये शक से पाक है, इसमें कोई शक नहीं। किस बात में शक नहीं? इस बात का शक नहीं कि पहली बात है ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, दूसरी बात इस बात में भी कोई शक नहीं कि जिस तरह कल के दौर में इस किताब के ज़रिए से इस्लाह हुई थी, क़यामत तक के दौर में बिगाड़ की इस्लाह का एक ही हल है, और वो है ज़ालिकल किताबु ला रईब फी। आज भी आप हिदायत से दूर बिगड़े से बिगड़े इंसान को देखना चाहें ना, आप उसको जो मर्ज़ी सिखा दें, आप उसको बड़े बड़े थीसिस सुनवा दें, लेक्चर सुनवा दें, यूनिवर्सिटी में ले जाएं, उसको अरबी ज़ुबान का कोर्स करवा दें, तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली कब आएगी? जब ये किताब खुलेगी। बिगड़े हुए दिलों को संवारने वाली ये किताब है, और इसमें कोई शक ना करे कि मुसलमानों ने जब तक इस किताब पे अमल किया था वो कामयाब थे, जब से इस किताब पर अमल छोड़ा वो मुसलमान जो थे वो बिखर गए। आज भी अगर मुसलमानों को इज्जत मिलेगी तो इसी किताब पर अमल करके मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह यरफाउ बिहाज़ल किताब, बेशक अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए लोगों को बुलंदी देता है, उनको उरूज मिलता है, और इसी के ज़रिए कौमों को नीचा कर देता है। जब तक मुसलमानों ने किताब से गहरा ताल्लुक़ रखा, अमल वाला ताल्लुक़ रखा, इस किताब को अपना इमाम बनाया, तो मुसलमान दुनिया में लीडर्स थे, पायनियर्स थे, लोगों के जहनों और दिलों पे उनकी धाक बैठी हुई थी। और जब से अपने आप को किताब की रहनुमाई से दूर किया, इसको वजीफ़ों और दम दरूद की किताब बना लिया, जिन्नों भूतों के भगाने की किताब बना लिया, हाफिजों के सीनों में डेलने वाली किताब बना लिया, उस वक्त से मुसलमानों का डाउनफॉल शुरू हो गया। लिहाजा आज भी अगर पलटना चाहते हो तो पलटोगे कब? जब इस किताब को किताब हिदायत बनाओगे। फरमाया, फी ही खुदा लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ये लफ्ज़ जो फी ही है, अगर आप देखें तो इसके पीछे भी स्वात लाम लिखा है और जीम लिखा है नीचे। स्वात लाम होता है सल्ला, मिला लो, जीम का मतलब होता है जायज़ है। इस आयत को आप दो जगह रोक सकते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रईबा फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, तो भी ठीक है। और अगर आप यूं पढ़े ना, ज़ालिकल किताबु ला रईब बस, और फिर फी ही हुदल लिल मुत्तकीन, तो भी ठीक है। फी ही बीच में कॉमन है, आधा उधर भी लग रहा है उधर भी लग रहा है। अब ये है असल बात, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ये क्या बात हुई? जो पहले ही मुत्तकी बन चुका उसको किताब की क्या जरूरत है। अमूमन हम कहते हैं ना, कुरान पढ़ो ताकि मुत्तकी बन जाओ, ऐसे ही है ना। तो यहां तो क्या कहा जा रहा है कि जो पहले से मुत्तकी होगा उसको हिदायत मिलेगी। ये थोड़ी सी उलझी हुई बात है, इसलिए कि हमें लफ्ज़ मुत्तकी का मानी नहीं पता। हमारे यहाँ मुत्तकी लफ्ज़ से क्या समझ आता है? नेक, आलिम, फाजिल, तहज्जुद गुजार, बहुत ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने वाले लोग। हालांकि तकवा ये नहीं है। तकवा ये नहीं है कि इंसान गुनाहों से पाक हो चुका हो, बल्कि खुद को गुनाहों से पाक करने की तलब का नाम तकवा है। इस वक्त अगर आप और मैं इस नियत से किताब पढ़ रहे हैं ना कि हमने अपने आप को बदलना है, हम थक के इधर उधर भटक के, अब हमें अल्लाह ताला की रहनुमाई की ज़रूरत है, हमें अब अपने आप को बदलना है, तो मुबारक हो कि आप तकवा की राह पे चल पड़े। क्या पता चला कि सच्ची तलब जिसके अंदर होगी ये किताब उसको फ़ायदा देगी। अल्लाह ने भेजी थी सबके लिए, हुदल्लिन्नास का लफ्ज़ आता है एक जगह, लेकिन फ़ायदा इससे तकवा वालों को होगा। वही इस किताब से फ़ायदा उठाएगा जो अपने आप को बदलना चाहेगा। ज़रा पूछिए अपने आप से, है हिदायत, है तकवा? देखिए, जिसके अंदर जितना तकवा होगा ना उतनी ही हिदायत मिलेगी उसको। और हिदायत के दो मानी हम पीछे पढ़ चुके, एक होती है हिदायते इल्मी, इल्म की हद तक आपको पता चल गया, मसलन नमाज पढ़नी चाहिए। क्या आज के दौर में आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई मुसलमान हो और उसको ये ना पता हो कि 5 वक्त नमाज पढ़नी लाजिम है? नहीं होगा ना कोई ऐसा मुसलमान। इसके पास कौन सी हिदायत आ गई? हिदायत इल्मी, इल्म की हद तक इसको पता है। लेकिन हिदायत की दूसरी किस्म, हिदायत अमली, अमल की तौफीक मिल जाए। पहली को इरशाद कहते हैं, बात पहुंच गई, दूसरी को तौफीक कहते हैं कि अब पढ़े हुए मालूम बात पर अमल की तौफीक मिल जाए। तो जब कहते हैं ना हुदा लिल मुत्तकीन, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला की ये किताब उसी दिल को छेड़ेगी जो इससे फ़ायदा लेना चाहेगा। पढ़ने वाले बहुत हैं इस किताब को, हिदायत पाने वाले कम हैं। जितना अल्लाह का डर होगा उतनी ही ये किताब आपकी रहनुमाई करेगी, जितना तकवा उतनी हिदायत। पढ़कर भी अगर अमल ना आए तो अल्लाह से तकवा मांगना है। जैसे आप देखिए कि अच्छी ज़मीन में आम बीज डालें ना तो अच्छा फल आता है, और ख़राब ज़मीन में ख़ास बीज भी डाल देना तो वो भी ज़ाया हो जाता है। लिहाजा पता क्या चला कि इस किताब से फ़ायदा होगा उनको जो खुद फ़ायदा लेना चाहेंगे। आप कह लें कि अपने आप को बदलने वालों को ये किताब फ़ायदा देगी, क्या आप अपने आप को बदलना चाहते हैं? जो लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते ना, स्टबन किस्म के, उनको इस किताब से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। मेरे जहन में इस लफ्ज़ को जब पढ़ती हूँ ना, हुदा लिल मुत्तकीन, तो जहन में क्या आता है कि मैं ऐसे मादे से बनी हुई हूँ जिसको जिधर मर्जी मोड़ लो, लोग पतली पतली उसकी डंडियाँ बना रहे हैं, कहीं उसको आटे की तरह गूंद रहे हैं, फिर उसके बाद एक नया पुतला बनता है। इस किताब से वही फ़ायदा उठाएगा जो अपने आप को मोल्ड करेगा, खुलना चाहेगा, गूंदे अपने आप को नए सिरे से, जो अपनी ज़ात के खौल में इतने स्टबन हो चुके हैं, इतने पुख्ता हो चुके हैं कि अब वो टूटना नहीं चाहते। हम पहले से जानते हैं हम नेक हैं, हम बहुत अच्छे हैं। वो शीशे के केस में तो अपने आप को बंद करेंगे लेकिन वो बदलेंगे नहीं। आज इस किताब को पढ़ने और पढ़ाने वाले कितने हैं, लेकिन किताब का असर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते। लिहाजा हुदा लिल मुत्तकीन क्या है, ये उन्हीं को फ़ायदा देगी जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। अब ये कौन होते हैं, इनकी सिफात है, मैं इकट्ठी पढ़ूंगी, फिर थोड़ी थोड़ी वजाहत बाद में मौका मिलता है तो उसकी करेंगे। हुदा लिल मुत्तकीन, आप कहते हैं अच्छा वाह, हमने तो मांगी थी दुआ हिदायत की, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता दे। अब अल्लाह ताला कहते हैं हिदायत मिलेगी मुत्तकियों को, तो ये मुत्तकी कौन होते हैं? कहा आओ तुमको बताता हूँ। الذين يؤمنون بالغيب, جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. پہلی صفت ہے متقی بننے کی کہ آپ ان دیکھی حقیقتوں کو ماننے لگیں, آپ کی آنکھوں سے وہ سارے پردے چھٹ جائیں جنہوں نے آپ کو خدا سے دور کیا ہوا ہے. مادہ پرستی کے پردے, نفس کی خواہشات تمناؤں کے پردے, انسان چھپی بھی حقیقتوں کو دیکھے. غیب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو انسان اپنی فائیو سینسز حواس خمسہ سے نہ دیکھ سکے. مثلا آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات, ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا. فرشتے آج کے دور میں تو ہمارے لیے رسول بھی ہیں, ایسے ہی ہم تو رسولوں کو نہیں دیکھ چکے. جنت, جہنم, قیامت, حشر, نشر, قبر کے معاملات, حالات, یہ سب کیا ہے؟ یہ غیب کی چیزیں ہیں اور آپ ان کو چھو نہیں سکتے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہم ٹیلی اسکوپ لگاتے ہیں نا, تو ہم پہاڑ پہ دور ایک چیز ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن دنیا کی کوئی ٹیلی اسکوپ ایسی نہیں جسے ہم اپنے کرامن کاتبین کو دیکھ سکیں, جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ ہمارے نام اعمال کو مرتب کر رہے ہیں. تو کرامن کاتبین کیا ہوگے؟ غیب میں سے ہوگے. بات واضح ہے؟ غیب میں ہر وہ چیز ہے جس کو دنیا کی کسی مشین, کسی آلے کے ذریعے سے مت دیکھا جا سکے. اگر آپ ایک چھوٹا سا تقابل کرنا چاہیں نا غیب کا اور حاضر کا, تو آپ کر سکتے ہیں. بس آپ دیکھیں ہمارے حواس خمسہ ہیں نا, یہ غلطی کر سکتے ہیں. آپ چاند کو جیسا یہاں سے دیکھتے ہیں, چمکتا ہوا, خوبصورت, سجا ہوا, جب آپ چاند پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ویسا نہیں دکھتا. فرق ہے نا. سراب دیکھے آپ نے کبھی؟ میراج بولتے ہیں اس کو انگلش میں. بہت دھوپ میں آپ دور سڑک پہ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے پانی پھیلا ہوا ہے, قریب جاتے ہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں, وہ ریفلیکشن ہے. اب کس نے دھوکہ دیا؟ آپ کی آنکھوں نے دھوکہ دیا. آپ کی آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں. پھر ایک اور اس کی کمزوری, اور وہ کیا کہ یہ محدود ہیں. کیا میں اس دیوار کے پیچھے سے دیکھ سکتی ہوں؟ اور آپ اس دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا, محدود ہے, لمیٹیشنز ہیں. آپ اگر کھلے میدان میں چلے جائیں, ایک خاص حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں. ہمارے خواص جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح سے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں نا اس کے اندر کیا ہے کہ ان لمیٹڈ ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی. غیب کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے وحی کے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے وہ لوگ جو آج ایسی چیزوں کو نہیں مانتے, مثلا بعض لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہم نہیں دیکھ رہے. تو جرمز کو کیوں مانتے ہیں آپ؟ آپ ایٹم کے اندر باریک اس کے ذروں کو بھی مانتے ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ یو مینونا بالغیب, کیا کہ بن دیکھے مان جاؤ, جو اللہ نے کہا اس کو مان جاؤ, اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ. اور اسی سے پھر انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے. جب اللہ کی معرفت آتی ہے, اللہ کی بڑائی آتی ہے, تو دل جھکتا ہے اور انسان ویقیمون الصلاۃ, نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی معرفت آ گئی, جس کو جنت جہنم دکھنے لگی, پھر وہ فوراً عاجز ہوگا اور اس کا عملی اظہار نماز کی صورت میں ہوگا. جب نماز پڑھے گا تو اللہ سے قرب بڑھا, جب اللہ کے قریب ہوا تو اس کا ایک اگلا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کی محبت آتی ہے. اور وہ کیسے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, وہ پھر اپنے مال کو اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئر کرنے لگتا ہے. وہ اپنے مال کو اپنی ہی چیز نہیں سمجھتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی دین سمجھتا ہے. اور پھر اپنے وقت کو, اپنی صحت, اپنی اولاد, اپنی گاڑیوں, اپنے گھروں کو اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئر کرنے لگتا ہے. یہاں تک آپ دیکھیں تین صفات آئی ہیں متقی کی. یومنون بالغیب, غیب کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, گویا کہ ان کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے, توحید راسخ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نظر آنے لگتا ہے. اس کے بعد یقیمون الصلاۃ, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو اللہ سے محبت ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے. یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے. اگر آج نماز کوئی نہیں پڑھ رہا نا, تو اس کو یہ مت کہیے کہ نماز پڑھو. اس کو یوں مینونہ بالغیب پہ لے کے جائیے, اللہ سے قرب ملائیں. اور دو چیزیں اللہ بن مانگے نہیں دیتا, اپنی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت. جب نماز اچھی ہوتی ہے نا, صحیح روح کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو پھر بندے کا دل کھلتا ہے. مما رزقنا ہم ينفقون، پھر وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اور اس طرح وہ بندہ دن بدن تقویٰ کی طرف بڑھتا جاتا ہے، آگے سے آگے جاتا ہے. ان تین صفات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ اگر لیں تو ہمیں بہت کچھ پتہ چل جائے گا اپنے بارے میں کہ کیا واقعی میں متقی بننا چاہتی ہوں، کیا میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں، کیا واقعی میں نے اللہ کے دین کو سیکھنے کا جو ارادہ کیا ہے اس نیت سے کیا ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے راستے میں لگانا ہے. کتنا بڑا ظلم ہوگا نا کہ اس نے آنکھیں دی اور یہ آنکھیں وہ چیزیں دیکھیں جس سے اللہ ناراض ہے، یہ کان اللہ نے دیے اور یہ کان وہ چیزیں سنے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. زبان اللہ نے دی، دل اللہ نے دیا، دماغ اللہ نے دیا اور اس میں سوچیں اور اس میں محبتیں اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کی ہوں تو اپنا محاسبہ کریں گے. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنے والوں میں سے وہ لوگ جن کے دل میں حقیقت میں اپنے آپ کو بدلنے کی تڑپ لگ جاتی ہے اور وہی لوگ اپنے آپ کو بدلتے ہیں. اس کے لیے انسان کے دل میں سچی طلب اور تڑپ کا ہونا لازمی ہے، پھر ہی وہ یہ کام کرے گا. اب یہاں دیکھیے کہ ينفقون پہ بات پوری کی گئی، حالانکہ مضمون آگے بھی چل رہا ہے، کیونکہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرتہ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ تین صفات بھی متقین ہی کی صفات ہیں، لیکن اس کو ایک ہی آیت میں کرنے کی بجائے الگ سے دوسری میں کیوں کیا گیا؟ کہ جو ابتدائی تین صفات تھیں، یومنون بالغیب اور یقیمون الصلاة اور مما رزقناہم ینفقون، یہ کسی انسان کا ذاتی معاملہ ہے، انفرادی نوعیت کے کام ہے، جبکہ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اجتماعی معاملات ہیں، یعنی قومی سطح پہ ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں ایک ایمان والا جو واقعی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو پھر اس کے عمل میں ایک چیز ہونی چاہیے، اور وہ کیا؟ کہ والذین یؤمنون، وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، مان جاتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، کس چیز کو؟ بما انزل الیک، جو آپ پہ نازل ہوا، کس پہ؟ الیکا، کاف کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ یہ وہی بات ذہن میں رکھیے کہ سورۃ بقرہ یہود مدینہ ہی کے ٹیکسٹ میں نازل ہوئی. مدینہ میں رہنے والے یہود اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ ہم صحیح دین پہ ہیں، کیونکہ وہ اپنے دور کی چنی ہوئی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی خوش فہمی دور کر دی کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ یہود مدینہ میں جو رہتے ہیں، یا آج قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک اصول دے دیا کہ ہر وہ بندہ جو یہ کہے کہ بھائی فلاں اپنے دین پہ ہے، اللہ کو تو مان رہا ہے، تورات کو تو اس نے مان لیا، تو پھر اس کے متقی ہونے میں کیا شک ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تقویٰ کی اور متقی ہونے کی یہ شرط ہے کہ بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی ان کو ماننا بھی لازم ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ کوئی شخص جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے ہوئے دین کو نہیں مانے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں قابل قبول نہیں. دوسری بات اس سے پتہ چلی کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن پڑھ لیتے ہیں یہی کافی ہے، اب ہمیں کس سنت کی بات کرتے ہیں اور اب ہم اور کیا کریں، ٹھیک ہے بس ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث کی بات نہ کرو، سنت کی بات نہ کرو، یہ اس کا رد ہے کہ نہیں، کسی کا دین پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہوئے پہ ایمان نہ لائے. پھر یہاں دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ بما انزل الیک کی وجہ، یہ نہیں کہا کہ والذین یؤمنون بالقرآن، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں تو یہ تصور آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا تھا صرف، نہیں، قرآن کے ساتھ حدیث کی حجت کے لیے یہ آیت آ رہی ہے کہ جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ کوئی حدیث کو نہیں مانے گا تب تک وہ ایمان کے اس درجے پہ نہیں پہنچتا کہ جہاں سے انسان کے اعمال کی قبولیت شروع ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی کی رسالت کی بات کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. اس میں بھی بڑا گہرا نقطہ ہے، پہلے کیا نازل ہوا تھا؟ تورات، زبور، انجیل، और इसी तरह पिछले अंबिया कराम की जो किताबें थी जिनको अपने दौर में लोगों की हिदायत के लिए रखा गया, उस पे ईमान आएगा। ये नहीं कहा कि मिम बादिक, गौर कीजिए, इस लफ्ज से अल्लाह के नबी का आखिरी नबी होना भी साबित हुआ। पूरे कुरान पाक में ये बात कई जगह आती है कि जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्करे के बाद ये कह दिया गया कि कबलिक, आपसे पहले, बाद का बात नहीं है, अगर अल्लाह के नबी के बाद कोई और नबी होता, जैसा कि आज के दौर में कुछ लोगों का ख्याल है, बल्कि कुछ तो अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले भी ऐसे लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी आएंगे और उनके ख्याल में अब आ भी चुके, तो उसका रद्द है कि पूरे कुरान पाक में ये तो मिलता है मिन कबलिक, माँ कबल का, लेकिन ये नहीं मिलता मिन बादिक। कितने लोगों को ये बात समझ आई है? वैसे हुई ना, अगर अल्लाह के नबी के बाद कोई और नबी होता या कोई और शरीयत होती, तो यहाँ ये बात आनी चाहिए थी ना कि वमा उन जिला मिन कबली का व बाद का, तो बाद का नहीं आया ना। यही अंदाज आपको सूरत नहल की आयत 43 में मिलेगा, वमा अरसलना मिन कबली का, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले। फिर सूरत मोमिन आयत 78 में भी आता है, वलकद अरसलना रसुलम मिन कबलिक, हमने आपसे पहले रसूलों को भेजा। सूरत रूम आयत 40 में आता है, वलकद अरसलना मिन कबलिक रसुलन, हमने आपसे पहले रसूलों को भेजा। सूरत निसा आयत 60 में आता है, वमा उन्जिला मिन कबलिक, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ। सूरत जुमर आयत 65 में आता है, वलकद उहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन कबलिक, वही की गई आपकी तरफ और उन लोगों की तरफ जो आपसे पहले थे। सूरत शूरा आयत 3 में, सूरत बकरा आयत 183 और सूरत बनी इसराइल आयत 77 में भी यही दलाइल है, मिन कबलिक, कबलिकुम, कबलिक। तो पता क्या चला कि ये बात खत्मे नबूवत की दलील भी बन गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा इसको मान जाओ। वबिलआखिरति हुम यूकिनून, और वो आखरत को यकीनी जानते हैं। पीछे बात हो रही थी ईमान की, आप देखिए यूमिनूना बिलगैब था, फिर यूमिनूना बिमा उन्जिला था, लेकिन यहाँ बात आ गई यकीन की। क्यों? इसलिए कि यकीन ईमान के बाद का दर्जा है, उससे अगली चीज़ है। यकीन जो होता है ना, ये अकल से मिलता है, मुशाहदे से मिलता है और तजुर्बे से मिलता है। इंसान की अकल इस चीज़ का तकाजा करती है कि इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया आए। जिन लोगों को यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, जिनको यहाँ उनकी तकलीफ़ों के पूरे बदले नहीं मिलते, या जिन लोगों ने कोई अच्छा काम किया और उसको यहाँ खैर नहीं मिलती पूरी, तो उनका हक बनता है कि एक ऐसा दिन आए कि जहाँ उनको बदले दिए जाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ यकीन की बात ज़्यादा वाज़े कर दी, क्योंकि लफ्ज़ ईमान जो आता है वो मानने के लिए है। फिर यहाँ एक और चीज़ भी सोच लीजिए कि मानना और चीज़ है और जानना और चीज़ है। बाज़ लोग जानते हैं बस, इस्लाम है, नमाज पढ़ो, कुरान, अल्लाह का नबी, जस्ट लाइक अ न्यूज़। मसलन आप कोई खबर सुनते हैं, आपको किसी ने बता दिया, मिसाल है कोई छोटी सी बात ले लें, खबरों में कोई खबर आ गई, दुनिया के किसी हिस्से में जलजला आ गया, आपके कानों तक ये बात टकरा गई, आप जान गए। क्या जरूरी है कि जो बात आप जाने आप मान जाते हैं? आप कहते हैं नो, आई कैंट बिलीव, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। फिर आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक से सुनते हैं, दूसरे से सुनते हैं, तीन चार लोग जब कहते हैं ना हाँ वाकई मैंने अपने कानों से सुना कि फलां जगह जलजला आ गया, तो फिर आप मानने लगते हैं, अच्छा हो सकता है भाई, एक ने कहा ठीक होगा, दो ने कहा ठीक होगा, तीसरे ने कहा ठीक होगा, मान लिया। ये दूसरा दर्जा है, पहला क्या था? जानने का, दूसरा क्या हुआ? मानने का। अब इस मानने का फिर एक आगे दर्जा है, क्या आप कहते हैं नहीं क्या पता, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना, आप खुद जाके उस जगह को देख लेते हैं, जब आप मुशाहिदा करते हैं, आप वहां की टूटी हुई इमारतों को देखते हैं, गिरी हुई चीजों को देखते हैं, तो फिर आप मान जाते हैं कि हाँ वाकई अब मुझे यकीन आ गया कैसे ही होगा। छोटी सी एक और मिसाल देती हूँ, हम यहाँ बैठे हैं, बाहर दूर हमें रोड पे धुआं दिखे, कुछ लोग उस धुएं को देख के कहें मेरा ख्याल है कि वहां आग लगी है, ये एक पहला दर्जा होगा। हम में से कुछ लोग के हाँ वाकई वो देखो मुझे भी दिख रही है, हाँ हाँ वाकई मान गए कि वहां आग लगी है, शोर मचा देंगे, ये दूसरा दर्जा है। लेकिन कुछ बड़े मुख्तात होते हैं, वो कहते हैं नहीं उठो चलो जूता पहन के देख के आते हैं। जब वहां जाएंगे, करीब जाएं, धुआं दिखें, शोले निकलते देखें, आवाजें सुने, फिर उनको यकीन आएगा। तो इंसानों में भी ये तीन दर्जे होते हैं। कुछ लोग बस जानने को इस्लाम कहते हैं, और माजरत के साथ आज मुसलमानों में से अक्सरियत का इस्लाम सिर्फ जानने वाला है। वी नो दिस इज, हमें पता है कि अल्लाह के नबी थे, हमें पता है कि इस्लाम है, लेकिन कुछ लोग फिर उससे आगे बढ़ के मान जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें जिस दर्जे पे पहुंचाना चाहता है वो यकीन का दर्जा है। एक इंसान के दिल में इतना यकीन आ जाए आखिरत के बारे में कि वो उसके बारे में गलती करे ही ना, यकीन आ जाए कि मैंने नहीं रहना, अपने ना होने का यकीन दिलाना सबसे मुश्किल यकीन होता है। आप सारी दुनिया को फतवे दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी जात को जब इस बात का यकीन दिलाते हैं ना कि मुझे इस दुनिया से जाना है, फिर आप वाकई अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा जब ये कैफियत आती है ना, तो फिर इंसान अपने आप को बदलता है, फिर उसकी अकल, उसकी रूह, उसकी सोचें, उसके ख्यालात, हर एक पे आखरत छा जाती है। जिसको कहते हैं ना किसी की आंखों पे बस एक ही पर्दा पड़ गया है कि उसको हर चीज़ में वही चीज़ दिखती है, ऐसे लोगों को फिर आखरत दिखने लगती है। खुली आंखों से अपने आप को आखरत में देखते हैं, हर काम करते हुए वो ये नहीं सोचते कि इसका यहाँ क्या असर आएगा, वो ये सोचते हैं कि इसका मेरी आखरत में क्या असर आएगा। ये एक खाना जो मैं खाने लगी हूँ इससे मुझे कितना कुछ टेस्ट मिलेगा, वो ये सोचते हैं कि ये टुकड़े जब मेरे पेट में जाएंगे तो इसका मेरी आखरत पे क्या असर आएगा। ये ड्रेस जो मैं पहनने लगी हूँ वो ये नहीं सोचते मैं पहन के कैसी लगूंगी, वो सो स्मार्ट सो प्रिटी, वो एक लम्हे में आगे झांक के देखते हैं कि मेरे इस ड्रेस के पहनने का मेरी आखरत पे क्या असर आएगा। और यही वो चीज़ है जो इंसान को अपनी इस्लाह पे माइल करती है। सहाबे कराम और हमारे ईमान के अंदर यही फर्क था, हमारा ईमान मानने पे रुक गया, सहाबे कराम यकीन के दर्जों पे फायज हुए। वो क्यों कहा करते थे कि हमें ओहद पहाड़ के पीछे से जन्नत की खुशबू आती है। उमैर बिन हमाम का कॉल मिलता है ग़ज़वे ओहद में जब गए तो कहने लगे मुझे ओहद पहाड़ के पीछे से जन्नत की खुशबू आ रही है। अनस बिन नज़र कहते हैं कि मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी जन्नत मुझे पुकार रही है। और यही चीज़ फिर इंसान से कुर्बानियाँ करवाती है, वरना इंसान चंद घंटे भी नहीं बैठ सकता अल्लाह के लिए। ये एहसास रातों को भी जगवाता है, और ये एहसास सब कुछ जानने के बावजूद इंसान को ऐसा कर देता है कि मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा बंदा फिर अंदर से टूटता है। और फिर उसको इतना यकीन आता है कि फिर अल्लाह ताला उसको दुनिया में इसकी खुशखबरी सुना देते हैं कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग हैं अपने रब की तरफ से हिदायत पर, ये है सीधे रास्ते पे। चले तीन तरह के लोग थे एक चीज को पाने के लिए, मांगी थी दुआ तीन किस्म के लोगों ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की, लेकिन दो लोग रास्ते में दम तोड़ गए। और आगे कौन पहुंचे? तकवा था, हिदायत से बात शुरू हुई थी, हिदायत पे आ गई। दुआएं तो सारे ही मांगते हैं, लेकिन मिलती उनको है जिनमें तड़प होगी। अब देखिए कि हिदायत और गुमराही जो है ना, ये दो चैनल्स हैं, जैसे टीवी के चैनल्स होते हैं ना, ये दो डिफरेंट चैनल हैं, इनका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। आप हिदायत का चैनल खोल लें, आप गुमराही का खोल लें, ये सरासर आपके हाथ में है। अल्लाह ताला ने हर एक को अकल दी, दिल दिया, दिमाग दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी। वादे अलस्त की सूरत में हमारी इंस्टिंक्ट के अंदर, हमारी तबीयत के अंदर, फितरत के अंदर अपनी पहचान रखी, फिर वही के जरिए अल्लाह ताला ने अंबिया कराम के जरिए से हमें दी। लेकिन फ़ायदा वही उठाएगा जिसने खुद से इरादा किया हुआ। ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत पे हैं। गौर कीजिएगा, अला खुदन, अला इज्जत के लिए होता है, ऊपर डोमिनेंसी, ये है अल्लाह की तरफ से हिदायत पे, मेर रब्बिहिम। और इससे एक और बात पता चलती है कि हिदायत का सोर्स अल्लाह की ज़ात है। कुरान पाक में आता है इन्नल हुदा हुवल हुदा, अल्लाह ही की हिदायत असल हिदायत है। हिदायत का फैसला इंसान नहीं करेंगे, गिरोह नहीं करेंगे, इदारे नहीं करेंगे, इंसानी अकल नहीं करेगी कि यह हिदायत है कि नहीं। बस हम सब बैठें और एक कानून बना लें कि आज के दौर में चूंकि इतना सफोकेशन है और बाहर इतनी गंदगी है, तो आइए आज के दौर में किसी हद तक जिना को जायज करार दे लेते हैं। क्या करें फिर, आखिर कुछ तो जज्बात का इजहार होना चाहिए। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, बड़े बड़े मुफक्किर बैठे हैं, नहीं कर सकते। क्यों? मेर रब्बिहिम, क्योंकि अल्हादी वो है, अल्लाह है वो जो हिदायत देने वाला है। इसलिए मैं और आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कह सकते कि ये दीन है। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही हैं वो कामयाब लोग। ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने कामयाब किया, जिनकी की हुई मेहनतें कामयाब हो गईं, जिनकी खेतियां अब सरसब्ज होने वाली हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया, किस लिए? अपने रास्ते के लिए। और ऐसे ही लोग अल्लाह ताला की निगाहों में काबिले कबूल हैं। ये वही लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया। लफ्ज़ मुफ्लिहून के अंदर मेहनत का तसव्वुर है। किसान को और मोमिन को तकाबुल में करके देखें। किसान सुबह जल्दी उठता है, उसकी नजरें आसमान की तरफ लगी रहती हैं, कब बारिश बरसे और मेरी फसल हरी हो। फिर इसी तरह उम्मीद के साथ खौफ भी होता है उसके दिल में, खड़ी फसल कहीं बिजली की नजर ना हो जाए। इसी तरह मेहनत करता है, कभी खड़ा होता है, कभी बैठता है, कभी उठता है। बिल्कुल यही कैफियत एक ईमान वाले की जिंदगी में भी होती है, वो भी सुबह जल्दी उठता है। एक ईमान वाले से क्या मतलूब है कि जल्दी उठो, अपनी निगाहें आसमान की तरफ लगाओ, अल्लाह की रहमतों को मांगो, अपनी मेहनत पे कयास ना करो, कोशिश करो, नतायज अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो। और इस तरह एक बंदा मेहनत करते करते अल्लाह ताला की निगाहों में प्यारा बनने लगता है, और वही लोग हैं कामयाब होने वाले। अधूरी कामयाबी नहीं है। मुफलिह का लफ्ज़ अभी लफ्ज़ी वजाहत में हम देख चुके हैं कि कामयाबी मुकम्मल दुनिया भी बनती है और आखिरत भी बनती है। अधूरी और जुज़वी कामयाबी को फलाह नहीं कहते। मसलन आप में से कोई 5 पेपर्स दे, यानी उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपको उस क्लास से अगली क्लास में जाने के लिए उन 5ों के इम्तिहान देना और उसमें कामयाब होना लाजिम है कि नहीं? अगर कोई 5 में से 3 पेपर्स क्लियर कर दे और 2 ना करे, क्या होगा? अगली क्लास में नहीं जाने देंगे। यही है लफ्ज़ फल्लाह। अरबी जुबान में कामयाबी के लिए बहुत से लफ्ज़ हैं, जैसे फ़ाइज़, फौजिया, कामयाब होने वाले। हुमुल फ़ाइज़ून कुरान पाक में आता है। फमन ज़ुख़्ज़िख़ा नारी बहुत खिलल जन्न फ़कद फ़ास, जो जहन्नुम से बचा के जन्नत की तरफ दाखिल कर दिया गया या जन्नत में भेज दिया गया, वही कामयाब हो गया। लेकिन यहाँ फ़ाइज़, फौजिया, फ़ाइज़ून नहीं आया, मुफ्लिहून आया है। क्या पता चला कि उस जन्नत को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चीर फाड़ करनी पड़ेगी। यहाँ बीज डालेंगे तो वहाँ जाके निकलेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अद्दुनिया मिसरतुल आखिरा, ये दुनिया आखरत की खेती है। अब कोई शख्स बीज तो करेले के डाले और उम्मीद करे कि यहाँ से आम का दरख्त होगा, नहीं होगा। इसीलिए जो यहाँ बीज डालेंगे कल वही वहाँ निकलेगा। इसके बगैर बात नहीं बनती। हमारे सामने एक चेकलिस्ट आ गई। इन 5 आयात में अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा नक्शा दे दिया कि जिसके अंदर रंग भरेंगे तो एक बेहतरीन शख्सियत सामने आएगी और वो मुत्तकी की सिफत होगी। हम सब इन आयात पे गौर करें। क्या वाकई मैं कामयाब होना चाहती हूँ? कामयाबी का लफ्ज़ हर एक को प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बस दिल चाहता है कि हर चीज़ में हम कामयाब हो जाएं। लेकिन दुनिया की कोई कामयाबी बैठे बैठे नहीं मिलती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ वक्त लगता है, कुछ उसके लिए माल लगता है। फिर जब ये सब कुछ एक इंसान कर लेता है ना, तो फिर नतीजा निकलता है। आज ये दुनिया मेहनत की जगह है। कुछ मुश्किल भी लगे तो जमे रहें, परेशान ना हो। अल्लाह ताला के सामने मस्कीन शक्ल बना के कह दें कि अल्लाह आपकी किताब सीखना चाहती हूँ, बड़ी मुश्किल हो रही है। वो दिन याद कर लें कि जिस दिन बच्चा पहली दफ़ा स्कूल जाता है, रोता हुआ ही जाता है। माँ खुश होती है, ज़रा स्कूल जाएगा, मुझे फारिग वक्त मिल जाएगा, और बच्चे रो रहे होते हैं। फिर एक वक्त आता है कि बच्चों को स्कूल में इतना मज़ा आता है कि माँ कहती है घर आ जाओ, तो वो कह रहे हैं नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। यही इस सफ़र में भी होता है। एक बंदा अगर अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करता है ना कि मैंने अपने आप को बदलना है, मैंने पीछे नहीं रहना, तो आप देखेंगे कि इंशा अल्लाह ताला उसकी कोशिशों में ज्यादा इखलास आता जाएगा, मेहनत करना उसके लिए आसान भी कर देगा। इतने ही सबक पे हम अगर रुकें और अपने आप को यकीन दिलाएं, थोड़ा सा अपना जायजा लेंगे कि क्या वाकई ये खूबियां जो मैंने इसमें देखी हैं मेरे अंदर हैं, क्या मैं इनसे फायदा उठा रही हूँ, क्या वाकई मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाती हूँ, कहीं दिल के किसी कोने में कोई शक तो नहीं छुपा हुआ। इतना हफीफ सा शक भी आ गया ना कि शायद क़यामत आनी है कि नहीं, क्या पता सब ऐसे ही चले जाएं जन्नत में, कुछ नहीं होना हम लोगों पे, शायद फरिश्ते ना ही हों, ऐसे ही एक बस एक आइडियलाइज किया हुआ है। तो फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें, क्यों? कि जितना इंसान गैब के ऊपर गौर करता जाता है ना, उतना भटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मान लीजिए, बड़ी प्यारी बात है, कहीं सुनी थी, एक खलीफा गुजरे हैं अपने दौर में मुसलमान मुमलिकत के, तो एक दफा कहीं से जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक शख्स है मट्टी के खिलौने बना के बेच रहा है, ऐसे छोटे छोटे मट्टी के खिलौने। पूछा कितने के हैं? कहने लगा 1,000 दिरहम, यानी बहुत कीमत मांगी। कहा मट्टी के खिलौने और 1,000 दिरहम के? कहा हाँ, बस वो दीन का कुछ काम करता हूँ, उसमें ज़रूरत थी तो मैंने सोचा मैं लोगों से भीख क्यों मांगू, मैंने मेहनत की, मैंने हाथ से बनाए और लगा दिए, रख दिया, मेरी मर्जी, मेरी चीज़ है, मैं बेचूँ ना बेचूँ, कहूँ कौन लेगा, आगे चले गए। जब रात को सोए तो ख्वाब में देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत महल है और उसके बाहर इनकी बीवी का नाम लिखा है, जुबैदा नाम था इनकी बीवी का, कि ये कसरे जुबैदा। उठे सुबह तो कहने लगे कि जुबैदा ये बताओ तुमने कोई नेकी की है, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा ख्वाब दिखाया तुम्हारे बारे में। कहने लगी कोई ख़ास तो नहीं की, हाँ बस कल आ रही थी तो रास्ते में एक शख्स मट्टी के खिलौने बेच रहा था, मैंने पूछा भाई क्यों बेच रहे हो, उसने कहा दीन का कोई काम है तो भीख नहीं मांगी, लोगों से चंदा नहीं मांगा, मैंने अपनी मेहनत से बना लिए। कहा अच्छा ये बात है, लाओ मुझे सारे ही दे दो। कितने के? 1,000 के। कहने लगी मैंने उसको 1,000 अशरफियाँ दी और खिलौने लेके आ गई। कहा अच्छा तुमने किया क्या उनका? कहा मैंने क्या करना था, आगे आगे फेंक दिए, मेरी नीयत खिलौने थोड़ी थी, मैं तो उसकी मदद चाहती थी। कहेंगे अच्छा तेरी ये नेकी अल्लाह ने कबूल कर ली कि जिसके बदले में तेरा महल मिला। गए अंदर बैग में शर्फियां डाली, फौरन वापस उधर ही गए जहां कल वो शख्स खिलौने बेच रहा था, कि अच्छा इसको तो महल मिला, मैं भी लेके आता हूँ। जब वहां गए वो शख्स मौजूद था लेकिन खिलौने नहीं थे। कहा भाई किधर है खिलौने, मैं तो खिलौने खरीदने आया हूँ। कहने लगा कि आज नहीं, जरूरत कल थी और वो पूरी हो गई है। इस वाक्य से क्या सीखा? युमिनून बिल गैब, उनकी बीवी ने नेकी की थी अजर देखे बगैर, ये पहले महल देख के आ रहे थे फिर नेकी करने आ रहे थे। तो बस मेहनत करते जाएं और डालते जाएं, वो कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, करते जाएं और डालते जाएं कि अल्लाह हम बिन देखे मान रहे हैं, हमें इसमें मुश्किलात भी आएंगी तो हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका अजर वहां होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।